ओम शांति। आज हम विशेष इस अद्भुत मानव यंत्र की कार्य प्रणाली के बारे में बहुत गहराई से विचार करेंगे। बाबा कहते, हम आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। मतलब यह मन, बुद्धि और शरीर की जो दुनिया है, इसके राजा हैं हम। प्रत्येक व्यक्ति राजा है इसका। लेकिन आश्चर्य है कि ये राजा स्वयं ही अपने राज्य में बंदीकृत आत्मा की तरह विद्यमान है और उसके कर्मचारी ही उसे अपने राज्य में बंदी बना लिया है, और राजा राजी है इस बंदी पने से, और वो भूल गया है कि वो बंदी है और इस राज्य में सुख दुख सब चीज को भोगते हुए वो ये समझता है कि यह तो स्वाभाविक है, ऐसा तो होता है, कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी जब उसे होश आता है और तब उसे पता चलता है कि वह तो आनंद, प्रेम, शांति और शक्ति से भरपूर अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी आत्मा है, तब उसे बहुत प्रसन्नता होती और तब उसे लगता कि इस बंधन से मुक्ति मिले मुझे। लेकिन यह घड़ी थोड़ी देर ही रहती, फिर से वो बंदीकृत आत्मा के रूप में इस शरीर में बंद हो जाता है। इस राजा की कहानी है अपने ही राज्य में कैसे वो कार्य कर रही है। यह शरीर 5 मंजिले मकान की तरह है, जिसमें आत्मा अपने 4 मंजिल पर जो 4 कर्मचारी है उसके साथ रह करके कार्य करती। यानी इस शरीर में 5 लोगों का निवास है, 5 व्यक्ति रहता है इस शरीर में। यदि लौकिक में बोलते हैं ना कि कोई एक भी घुस जाए तो बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन यहाँ वास्तव में 4 तो अलग से बैठे हुए हैं और 1/5 आत्मा खुद बैठी हुई है। और ये 4 कर्मचारी कौन से हैं, यदि इसको आज हम देखेंगे कि ये 4 कार्य करने वाली शक्तियाँ क्या है हमारे अंदर और इन शक्तियों के कार्य क्या है। वैसे तो आप देखो तो ये इतना रहस्यमय है, या जो बातें जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, कि सब ज्ञान एक तरफ, शरीर के भी ज्ञान को यदि देखें तो डॉक्टर्स तो आज शरीर का ज्ञान अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी पूरा नहीं जानते, लेकिन फिर भी कहते हैं शरीर का डॉक्टर है। लेकिन जब इस शरीर के साथ मन जुड़ जाता है और जब यह शरीर साइकोसोमेटिक कहलाता है, शरीर मनस शरीर कहते हैं हम इसको, तब तो यह अत्यंत रहस्यमय हो जाता है, तब तो डॉक्टर की समझ से भी परे का विषय हो जाता है, क्योंकि एक ही दवाई पर 3-3 बार 5 बार अलग अलग तरह के रिएक्शन होते हैं। ये मन के रिएक्शन है, शरीर के नहीं। तो इसका अध्ययन, सब शास्त्रों के अध्ययन को एक तरफ रख दो और मिला दो, उसके बाद भी यह कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि आप देखो ना, एक स्मृति का हिस्सा खाली इस जन्म की 50 वर्ष की सीखे हुए सारे अनुभव, सारा डेटाबेस इस स्मृति में है, और यदि 84 जन्मों का डेटाबेस यहां है इस स्मृति में, यदि वो सामने आ जाए तो कितना बड़ा रहस्यमय स्थिति हो जाएगी हमारी। इस जन्म के डेटाबेस को ही हम नहीं संभाल सकते हैं, इस स्मृति को ही। 4 दिन पहले क्या भोजन किया था वो भी याद है, नहीं याद है 4 दिन पहले वाला भोजन, तो हम बहुत सारी बातों को भूल जाते हैं। तो ये जो 4 कर्मचारी हैं, इसके कार्य करने के ढंग बिल्कुल ही अलग ढंग के हैं। जैसे एक कर्मचारी शरीर है, अब शरीर कर्मचारी अलग तरह से सत्ता है, एक कर्मचारी खाली नहीं है, ये सत्ता है, अथॉरिटी है। ये 4 सत्ताएं हैं हमारे सामने। कौन सी सत्ताएं हैं? बौद्धिक सत्ता, भावुक सत्ता, इस भावुक सत्ता में कामनात्मक सत्ता भी मिक्स है, भावना और कामना जिसको बोलते हैं। तो बौद्धिक सत्ता, भावुक सत्ता, ऐच्छिक सत्ता और अनैच्छिक सत्ता। ऐच्छिक और अनैच्छिक का अर्थ है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, का अर्थ है स्वसंचालित सत्ता। यानी दो सत्ता सूक्ष्म है, बौद्धिक सत्ता और भावुक सत्ता जो सूक्ष्म है, और दो सत्ता जो मैकेनिकल पार्ट है हमारा शरीर की सत्ता जिसको हम बोलते हैं ऐच्छिक, माना जो इच्छा से संचालित होती हुई शक्तियां हैं, आँख कान नाक मुंह इच्छा से संचालित होती हुई शक्तियां हैं। तो ये शरीर एक सत्ता है, यांत्रिक सत्ता बोलते हैं इसको। इसमें एक दूसरा पार्ट है इसका अनैच्छिक, जो हमारी बिना इच्छा के संचालित होती है, और शरीर की जो मुख्य कार्य जो है वो इच्छा से संचालित नहीं है, अनिच्छा से संचालित शक्तियां हैं। ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीटिंग, सारी शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाएं बिना आपके पूछे होती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम है जो भी है। कल बोला ना, एक सेल एक सेकेंड में 6 लाख बार प्रतिक्रिया करता है, और सेलों का सिस्टम तो ऐसा है सेल का कि देवताओं की तरह, एक सेल अपना भोजन दूसरे सेल को देता है, दूसरा सेल अपना भोजन पहले सेल को देता है, सेल डायरेक्ट भोजन ग्रहण एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। तो अंदर सारा कार्य बहुत ही सूक्ष्म ढंग से चलता है, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ऐच्छिक क्रियाएं तो आपकी जो मुख्य रूप से आँख कान नाक, ये जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, ये सब इसके माध्यम से जो हम कार्य करते हैं वो ऐच्छिक कार्य करते हैं, इच्छा से संचालित कार्य बोलते हैं। लेकिन वैसे हमारी ये सत्ता भी हमारी इच्छा से संचालित नहीं है, अपने मन मत करती है, हमारी इच्छा से नहीं संचालित है। हमको, हम सवेरे शाम तक सोचते हैं कि बाबा ने आज दृष्टि के लिए क्या कहा है, और हमारी दृष्टि को ऐसे रखेंगे, लेकिन ये दृष्टि चलती है ऐसे जैसे आपने संकल्प किया था, सवेरे लिखा था डायरी में कि आज हम ऐसे ऐसे देखेंगे और ये सब करेंगे, चलता है नहीं चलता है? समय परिस्थिति, उसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो 4 शक्तियां हैं इसके कार्य क्या हैं, मन के कार्य क्या हैं। देखो, आत्मा कितना भी स्वराज अधिकारी हो लेकिन नाक से देख सकती है कभी भी, या नाक से सुन सकती है? नहीं सुन सकती। कान से सत्ता है, अथॉरिटी है, आत्मा इस सत्ता के साथ मिलकर के कार्य करती है। हाँ, मन के द्वारा सुन सकते हैं, यदि कान से नहीं सुन रहे तो मन के द्वारा सुन रहे, लेकिन तब आपका पोजीशन क्रिटिकल पोजीशन हो जाएगा, बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। यदि आप मन से सुनना शुरू करेंगे, जो मन का कार्य नहीं है वास्तव में, यदि आपको सिद्धियां मिल गई है तो आप हर एक के मन की बात जान जाएंगे, तो कान की जरूरत नहीं है। तब तो आज ही मैं समझता हूँ 1 घंटे में आदमी पागल हो जाएगा, यदि ये सिद्धियां मिल जाए ना लोगों को, कि मन की बात जानने की सिद्धियां मिल जाए, तो आज 1 घंटे के अंदर पागल हो जाएगा। बड़ा आकर्षित लगता है कि जो हम सबके मन की बात जान ले, अरे पोल क्या खुल जाएगा, उसका अपना पोल ही खुल जाएगा, दूसरे का पोल तो छोड़ दो। अभी मान लो कि मैं यहाँ बैठा हूं और सुशील भाई उल्टा सीधा सोच रहा है हमारे लिए, ये कुछ पॉजिटिव सोच रहा है, वो दूसरा कुछ सोच रहा है, और तो हमारा तो दिमाग 1 सेकंड के जो भी हम सुनाने आए वो तो गया काम से कहां भी। बहुत खतरनाक स्थिति है हमारी। इसीलिए शरीर की यंत्र व्यवस्था जो बनी हुई है, इस यंत्र व्यवस्था के थ्रू ही जीवन का संचालन होना है, ये कार्य होना है। तो ये 4 सत्ताएं हमारे साथ है, तो बौद्धिक सत्ता, भावुक सत्ता, ऐच्छिक और अनैच्छिक। 2 यांत्रिक है, मैकेनिकल है, 2 सूक्ष्म है। 2 जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल का अर्थ है ज़्यादा स्वसंचालित, मशीन को बोलते हैं स्वसंचालित, ये ज़्यादा स्वसंचालित हिस्सा है, और वो स्वसंचालित कम है, सूक्ष्म है थोड़ा सा। ये हुआ 4 इसके भाग। इसमें पहला, जैसे मान लो कि अच्छा, ये 4 कार्य जो हैं इनके, जैसे इन्होंने कहा ना स्वाभाविक रूप से, इस इंद्रियों के, इन 4 सत्ताओं के जो कार्य हैं, इसके स्वाभाविक कार्य भी हैं जीवन में, इसके गलती भरे कार्य भी हैं, स्वाभाविक कार्य हैं, गलती भरे कार्य हैं, और आत्म जागृति की अवस्था में जब ये कार्य करता है तो बिल्कुल अलग तरह से डिवाइन कार्य करता है, अलग तरह से काम करता है। इसी का अध्ययन यदि हम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसके स्वाभाविक कार्य क्या है। नहीं तो हम क्या करते हैं, इसके स्वाभाविक कार्य में इसके अस्वाभाविक कार्य को मिक्स कर देते हैं और तर्क और तुलना से इस बात को प्रूफ कर देते हैं, पक्का कर देते हैं कि ये मेरा स्वाभाविक ही है। लेकिन वो स्वाभाविक नहीं था, वो गलती भरे कार्य उसके थे, उस सत्ता के, इस शरीर में। इसलिए इसका अध्ययन बहुत जरूरी है कि हम इस बात को मिक्स कर देते हैं कि ये तो स्वाभाविक है, तो शरीर है, तो ऐसा तो होना चाहिए, तो ये तो मन है, तो ऐसा तो होना चाहिए। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारी शक्तियां भी मिली हुई है। तो आत्म जागृति की अवस्था में इसके अलग तरह के कार्य हैं, आत्मविस्मृति की अवस्था में इसके अलग तरह के कार्य हैं। तो इसके स्वाभाविक कार्य को जानना बहुत जरूरी है। आप इतने बड़े इस अद्भुत मशीन में बैठे हैं, लेकिन बिना इसकी कार्य प्रणाली को जाने ही हम इसे संचालित कर रहे हैं। इसीलिए हमें आउटपुट जितना मिलना चाहिए था वो आउटपुट नहीं मिल रहा है बिल्कुल। और थोड़ा थोड़ा हम तो अभी थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे इस बात की, नहीं तो विस्तार से इसकी चर्चा हो तो मैं समझता हूँ कि 8-10 दिन तो इसको इसी बात को उठा करके लगाएं। तो अभी हम आते हैं बौद्धिक सत्ता, भावुक सत्ता, ऐच्छिक और अनैच्छिक। इन चारों को समझ लिया, दो सूक्ष्म है, दो मैकेनिकल है। अब बौद्धिक सत्ता जो है, इंटेलेक्चुअल सेंटर्स, इसके 4 डिपार्टमेंट्स हैं, इस सत्ता के 4 विभाग हैं। इन चारों विभाग के माध्यम से ये सत्ता कार्य करती है। इस तरह से भावुक सत्ता के भी 4 विभाग हैं, उन चारों विभाग के माध्यम से हमारे अंदर जो भावुक सत्ता है, इसको आप जागृत हों, जाने इसकी कार्यप्रणाली को, तो आप ये नहीं कहें मैं कौन हूँ, आप ये कह सकते हैं, अपने अंदर चेक कर सकते कि मैं कहाँ हूँ। कहाँ हूँ का अर्थ है कि ये कॉन्शियसनेस आत्मा किस सत्ता के साथ अभी कार्य कर रही है। कभी हम एक सत्ता के साथ कार्य करते हैं, कभी 2 सत्ता के, कभी 4 सत्ता के साथ कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन हमको बिल्कुल ही होश नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। कभी हम पूछते ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, हम हमेशा या तो ये पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, चूंकि इसके लिए ट्रेनिंग हमें मिली हुई है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये ट्रेनिंग मिली हुई है हमें। लेकिन हम इस बात के प्रति कभी जागरूक ही नहीं होते कि हम कार्य कहाँ कर रहे हैं अभी, चूँकि आप प्रतिपल इंगेज है, इन्वॉल्व हैं, सवेरे शाम तक बुद्धि से इन्वॉल्व हैं, शरीर से इन्वॉल्व हैं, भावना से इन्वॉल्व हैं, स्मृतियों से इन्वॉल्व हैं। तो कई बार तो आप एक ही सत्ता कार्य कर रही होती है और 3 सत्ता में कोई कार्य नहीं हो रहा होता, कभी 2 सत्ता मिलकर कार्य करती है, कभी कभी ये 16 सत्ता एक साथ मिलकर कार्य कर रही होती है। बौद्धिक सत्ता का 4 डिपार्टमेंट, भावुक सत्ता का 4 डिपार्टमेंट, ऐच्छिक सत्ता का 4 डिपार्टमेंट, अनैच्छिक सत्ता का 4 डिपार्टमेंट। ये अनैच्छिक सत्ता का 4 डिपार्टमेंट थोड़ा ज्यादा सूक्ष्म है, थोड़ा ज्यादा कम दिखाई देता है, लेकिन ये वॉलेंट्री का 4 डिपार्टमेंट्स भी कार्य करता है। बौद्धिक सत्ता का बौद्धिक डिपार्टमेंट अलग ढंग से कार्य करता है, बौद्धिक सत्ता का भावुक डिपार्टमेंट अलग ढंग से कार्य करता है, बौद्धिक सत्ता का वॉलेंट्री ऐच्छिक डिपार्टमेंट अलग ढंग से कार्य करता है, बौद्धिक सत्ता का अनैच्छिक डिपार्टमेंट अलग ढंग से कार्य करता है। बौद्धिक सत्ता का जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री है, और शरीर जो इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट तरह की चीज है। कार्य व्यवस्था दोनों की थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन है दोनों डिफरेंट। जैसे ऐच्छिक सत्ता है, हमारी इंद्रियों के द्वारा संचालित होती है, लेकिन बुद्धि की इंद्रियां क्या है, जब हम कहते हैं अनैच्छिक सत्ता, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीटिंग, इस शरीर की अनैच्छिक सत्ता है, इनवॉलेंट्री है, तो बुद्धि की इनवॉलेंट्री क्या है। बुद्धि की तो ये नहीं होगा ना, ब्लड सर्कुलेशन तो नहीं होगा ना, हार्ट बीटिंग तो नहीं होगा ना। तो बौद्धिक सत्ता अपने 4 डिपार्टमेंट में कार्य करता है, भावुक सत्ता भी अपने 4 डिपार्टमेंट में कार्य करता है। भावुक सत्ता का इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट डिफरेंट है, भावुक सत्ता का इमोशनल भावुक डिपार्टमेंट अलग ढंग से कार्य करता, भावुक सत्ता का ऐच्छिक डिपार्टमेंट अलग ढंग से कार्य करता, और भावुक सत्ता का अनैच्छिक डिपार्टमेंट अलग ढंग से कार्य करता है हमारे जीवन में। 64 नहीं, 16 नहीं, 4 हुआ ना, 1 के 4 तो 4 का 16 हो गया ना, 16 हो गया, 32 है एक्चुअल में, 32 नहीं है, उसे थोड़ा कम है, लेकिन ये सारे डिपार्टमेंट यस और नो में बट के कार्य करते रहते हैं। खाली भावुक सत्ता का एक दो डिपार्टमेंट यस और नो नहीं है वहाँ, जैसे आनंद प्रेम शांति सुख में यस और नो नहीं होता। उसको यदि उसके एक विभाग को छोड़ दें तो हमारा ये सारा 15 विभाग जो है वो यस और नो में कार्य करता रहता है सवेरे शाम तक, हाँ और ना, सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक, पसंद और नापसंद, इससे संचालित रहता है सवेरे से शाम तक। तो हाँ ये 31 डिपार्टमेंट्स है इसके जो इस ढंग से कार्य करते हैं। तो बौद्धिक सत्ता का, बौद्धिक डिपार्टमेंट भावुक सत्ता का, जो कि मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा आपको दिमाग को जागृत रखना पड़ेगा, ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हम मोनोटोनस है चीज़ों को, हम जो प्रवचन वगैरह सुनते हैं वो मोनोटोनस है थोड़ा सा, क्योंकि इस बात को सही ढंग से नहीं जानने के कारण ही सारा गड़बड़ हो रहा है हमारे सारे दिन के सवेरे शाम तक के कार्य में। जिस मशीन के साथ हम बैठे हैं उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है हमको, बहुत कोई ही जानकारी नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे, बहुत कम जानकारी है, और उस कम जानकारी के साथ आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। अच्छा, इस तरह से बौद्धिक सत्ता हो गया, भावुक सत्ता हुआ, वॉलेंट्री जो ऐच्छिक सत्ता है, ऐच्छिक सत्ता का भी इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट डिफरेंट है, ऐच्छिक सत्ता का इमोशनल डिपार्टमेंट डिफरेंट है, ऐच्छिक सत्ता का वॉलेंट्री डिफरेंट है, ऐच्छिक का इनवॉलेंट्री डिफरेंट है। इस तरह से अनैच्छिक जो इनवॉलेंट्री है उसका भी इंटेलेक्चुअल है अलग, लेकिन वो सब थोड़ा सा गुप्त है, थोड़ा सा ज्यादा सूक्ष्म। अब हम पहले विभाग पर आते हैं बौद्धिक सत्ता का, बौद्धिक विभाग थोड़ा टच करेंगे। बौद्धिक सत्ता का जो बौद्धिक विभाग है, डिपार्टमेंट है, बौद्धिक सत्ता के चार विभाग पर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। बौद्धिक सत्ता का जो बौद्धिक विभाग है वह रिसर्च, खोज, नए कार्य का आयोजन, नए कार्य का सृजन, जो भी नया है, खोज की जहां जरूरत है, अन्वेषण की जरूरत है, जो नई चीज निकाल करके लाना है, नई प्लानिंग करनी है, जिसको बाबा कहते हैं कि प्लानिंग बुद्धि, यह सारा का सारा कार्य इस डिपार्टमेंट का है। जितने भी साइंटिस्ट के कार्य हैं हमारे ही जीवन में, यदि हमारे सामने एकदम से कारोबार में आ जाता है कि अरे इस काम को कैसे करना है, एकदम से नई चीज़ हमारे सामने, तो हम चार लोग मिलकर के बैठ के उस बात का प्लानिंग करते हैं, उसके सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं, क्योंकि उसमें से नया कुछ करना है, नया निकालना है। तो यह है बौद्धिक सत्ता का बौद्धिक विभाग। सामान्यतया सभी लोग इस महत्वपूर्ण और उच्चतर विभाग को बहुत ही कम प्रयोग करते हैं। नवीनता के लिए और खोज के लिए ओहो इतना आलस आता है कि उससे तो बचते रहते हैं प्रत्येक, हम सवेरे से शाम तक हमारे जीवन कार्य व्यवस्था में इस काम से तो हम बचते रहते हैं बहुत ज़्यादा। हम सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल सेंटर्स के किस डिपार्टमेंट को ज़्यादा यूज करते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री को, जो मैकेनिकल पार्ट है उसका, मशीनी विभाग है उसका, उसको हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो बौद्धिक सत्ता का बौद्धिक विभाग है किसी भी चीज़ के लिए, सृजन के लिए, उसकी नूतनता के लिए, उसके लिए नई खोज, नया आयोजन, नए कार्य, नई व्यवस्था का संपादन करना, यह इस विभाग का कार्य है। बौद्धिक सत्ता का भावुक विभाग का क्या कार्य है? बौद्धिक सत्ता के भावुक विभाग का कार्य है किसी भी खोज, किसी भी प्लानिंग, किसी भी अन्वेषण, किसी भी नए के सृजन के लिए इच्छा और कामना का होना। बौद्धिक सत्ता में एक, बौद्धिक सत्ता के बौद्धिक डिपार्टमेंट में एक बात और है कि इस कार्य के लिए एकाग्रता और नियंत्रण की जरूरत पड़ती है। किसी भी खोज के लिए, रिसर्च के लिए एकाग्रता और नियंत्रण की जरूरत पड़ती है। यदि आपकी बुद्धि नियंत्रित नहीं हो तो आप नया खोज नहीं कर सकते, और एकाग्रता भी चाहिए, लेकिन एकाग्रता और नियंत्रण में यदि थोड़ी भी एक रूपता की अवस्था आती है, यानी कोई भी बाधा पड़ती है या कोई भी पसंद और नापसंद के चीज़ सामने आती है, तो तत्क्षण वह हाँ और ना के तीव्र आवेग में बदल जाती। अच्छा मान लो कि आप कुछ नया काम कर रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, कुछ नई चीज़ कर रहे हैं, और कोई कोई आदमी आकर के बीच में डिस्टर्बेंस करता। अब आप एकाग्र हैं, संतुलित हैं, उस कार्य को करने में लगे हुए हैं। बड़ा मुश्किल से तो बुद्धि एकाग्र होती है और ध्यान एक जगह लगता है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें ध्यान और एकाग्रता में शक्ति इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है। उस समय यदि कोई आकर के हमें कुछ ऐसा कहता है, डिस्टर्बेंस होती है, तब तत्क्षण वो सब चीज़ें बंद हो जाती है और हम यस और नो, नकारात्मक और सकारात्मकता के इस दो हिस्से में बट करके तुरंत एक रूपता की अवस्था में या तो क्रोधित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी भी भांति। तो इस बात के प्रति हम सजग और जागरूक रहें कि जब एकाग्रता और ध्यान पूर्वक जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमेशा एक रूपता से बचें। कोई भी परिस्थिति और कैसी भी चीज़ आए तो उसमें हमको अपने अंदर उस स्वरूप में न ढाल ले वो चीज़, नहीं तो हमारा कार्य रह जाएगा। उसके लिए हम पहले से आयोजन करके हम एकांत में चले जाएं, अलग रहें, लोगों से संपर्क में नहीं आए, अपना आयोजन हम करें अच्छी तरह। तो इसके लिए एकाग्रता की जरूरत और ध्यान की जरूरत पड़ती है। लेकिन भाव बौद्धिक सत्ता के भावुक विभाग में एकाग्रता और ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसका गुण है किसी भी नए खोज चाहे किसी भी कार्य के लिए इच्छा और अभिरुचि का होना। कोई भी कार्य जब तक इच्छा नहीं होगी, जब तक अभिरुचि नहीं होगी, तब तक कोई भी कार्य हम चाहे नया हो चाहे पुराना हो कर नहीं सकते। माना इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है, और यदि वहाँ अभिरुचि है तो विषय वस्तु स्वतः ही उन चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित किए हुए रहती है। एकाग्रता को आपका जिस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। नवीनता उस विषय वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेगी, एकाग्रता की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि आपके आपने कभी मर्सिडीज बेंज नहीं देखा गाड़ी, अब 5-5 करोड़ की गाड़ियां सब है आपके सामने से एकदम से आ जाए तो आपकी अभिरुचि होगी उसमें, और आप 5 मिनट के लिए चाहे 5 मिनट आपके सामने खड़ी है, 10 मिनट खड़ी है, आप बिल्कुल एकाग्रता की स्थिति में, बिंदुरू बीजरू भी फेल है उसके सामने, इतनी एकाग्रता हो जाती लवलीन अवस्था हो जाती है। ये एकाग्रता किसी भी प्रयत्न से नहीं आ रही है, मात्र अभिरुचि से आ रही है। यदि कोई व्यक्ति अपनी अभिरुचि को बढ़ा ले किसी कार्य के लिए, किस भांति ये वो जाने, उसमें नूतनता लाए या कुछ भी करे, यदि अभिरुचि को बढ़ाने में यदि वो सफल हो जाता है तो एकाग्रता नाम की मुसीबत से वो सदा ही बचा रहेगा। क्योंकि एकाग्रता अभिरुचि का परिणाम है, अन्यथा एकाग्रता इस सृष्टि में सबसे बड़ा टेंशन का काम है। एकाग्रता का क्या अर्थ है? कि आप किसी एक विषय वस्तु पर अपनी ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं और दोनों तरफ से 1000 वस्तुएं आपकी ध्यान को इधर खींच रही है, कोई इधर खींच रही है, आप फिर उधर से बचा रहे हैं, उधर से बचा रहे हैं, फिर उसको अपनी उस तरफ ला रहे हैं, फिर कोई चीज़ पुल कर रही है, कोई इधर से पुल कर रही है, तो एकाग्रता में थकान जो होती है वो थकान इस कारण से होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि एकाग्रता की शक्ति को हम विकसित नहीं करें, विकसित तो कर सकते हैं, लेकिन यदि अभिरुचि हो तो विकसित करने की जरूरत ही नहीं, एकाग्रता परिणाम है अभिरुचि का। तो यदि हम परिणाम ओरिएंटेड नहीं, तो हम एकाग्रता की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी सृष्टि इस दुनिया में बहुत सारे हमारे कार्य हैं जो हमें जैसे मजबूरी में करना ही पड़ता है, इसमें कोई रुचि नहीं है। कार्य में तो हमारी रुचि है ही नहीं, कर्म फल में रुचि है। यदि फल मिल जाए ना तो कर्म की तरफ तो कोई देखेगा नहीं, क्योंकि हाँ अकर्मण्यता, ये तो शरीर की जो व्यवस्था है, शरीर की जो सत्ता है वो बड़ा निरंकुश है। वो तो ऐसा निरंकुश है कि अब एक बाबा भी सामने बैठा है, मुरली चल रही है, और वो अकर्मण्यता और आलस में गया तो गया, उसे नींद चाहिए तो चाहिए, चाहे भगवान सामने बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सत्ता है, अथॉरिटी है। उसके लिए आपको उसके साथ समझौता करना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी कि भाई अभी बाबा की मुरली चलेगी, हमें जागे रहना है, तो दोपहर को थोड़ा सो लो, थोड़ा कम खाओ, थोड़ा सा 1000 तरह के उपाय करो। लेकिन वो निरंकुश है शासक, वो अपना काम करेगा। तो ये सत्ता है, अथॉरिटी है। तो एकाग्रता की जरूरत भावुक सत्ता में, बौद्धिक सत्ता का जो भावुक डिपार्टमेंट है उसमें ध्यान और एकाग्रता स्वतः ही अभिरुचि के कारण उस तरफ खींचा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ भी यदि एक रूपता की अवस्था आती है या डिस्टर्बेंस की स्थिति आती है तब वो एकाग्रता और अभिरुचि का विषय भी खंडित हो जाता है और हमारी बुद्धि उस तरफ चली जाती है। तो बौद्धिक सत्ता का यह दूसरा डिपार्टमेंट है। बौद्धिक सत्ता का ये दो डिपार्टमेंट हमारे जीवन में उच्चतर विभाग कहते हैं इसको, यह बहुत ही कम सक्रिय रहता है। यदि इसकी सक्रियता हो तो जीवन में बहुत सारे हम नए कार्य का सृजन कर सकते हैं और बहुत कुछ नया कर सकते हैं, लेकिन यह विभाग हमारा सबसे ज्यादा डल पड़ा हुआ है, जो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है हमारा। इसका तीसरा है बौद्धिक सत्ता का वॉलेंट्री ऐच्छिक विभाग। ऐच्छिक का अर्थ है इच्छा से संचालित और बहुत तीव्रता से संचालित। अब यह इसका मैकेनिकल पार्ट है, मशीनी भाग है ये, इसका इस बुद्धि का मशीनी भाग है यह वॉलेंट्री डिपार्टमेंट ऐच्छिक सत्ता। बौद्धिक सत्ता का ऐच्छिक डिपार्टमेंट क्या है, इसको हम फॉर्मेटरी एपरेटस बोलते हैं, कार्यकारी शक्तियां बोलते हैं। ये कार्यकारी शक्ति तुलना और तर्क से सतत संचालित रहती है। ये शक्तियां कहां से संचालित रहती है, तर्क और तुलना, तुलना और तर्क। सवेरे से शाम तक आपके जीवन में तर्क सक्रिय रहता है। तो मैं आपको बोलूं कि आप कहां जा रहे हैं और आप कहेंगे बैंगन ना आज अच्छा नहीं था, मैं क्या पूछ रहा हूं और आप क्या उत्तर दे रहे हैं, कोई तर्क संगत बातें नहीं हो रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जीवन में यदि तर्क संगत आप नहीं हैं तो आप एक मिनट में पागल घोषित कर दिए जाएंगे। कोई तालमेल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे विचारों में, शरीर में कोई व्यवस्था नहीं है। हमको बोले कि एक गिलास पानी ले आओ और वो शरबत उठा कर ले आए, अरे वो शुगर पेशेंट है शरबत पी के मरेगा क्या, उसको तो एक गिलास पानी चाहिए था। तो आप कहेंगे तुम पानी शरबत क्यों ले आए, तो आपको संकल्प चलने लगेगा। उससे यदि गलती हो गई है, होशियार आदमी है वो तुरंत तर्क का प्रयोग करता और कहेगा कि लॉजिक का प्रयोग करके कहेगा कि नहीं नहीं हम तो पानी नहीं था, तो मैं सोचा कि चलो शरबत से ही काम चल जाए आपका, चूंकि ये भी लिक्विड है। तर्क दे रहा है वो उस बात के लिए और तर्क देकर के इस बात को सिद्ध कर रहा गर्मी का मौसम चल जाएगा। तो अपने को यह जो हिस्सा है हमारा सवेरे से शाम तक तर्क और तुलना का हिस्सा है, हम सवेरे शाम तक तुलना करते हैं, इसका स्वाभाविक कार्य है तुलना। अब दो गिलास पानी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितना पानी है, इसमें कितना पानी है, हमें कितने पानी की जरूरत है, पानी वेस्ट ना हो, तो हम तुलना करते हैं दोनों चीज़ों में। तो तुलना करके उसी पानी को हम लेते हैं, लेकिन इसके तुलना भरे कार्य तीन स्थितियों में होते हैं। एक तो स्वाभाविक कार्य है इसके तुलना के, क्योंकि आप कदम कदम पर तुलना की जरूरत पड़ेगी, आप चल रहे हैं हरदम कंपैरिजन है, हरदम कार्य व्यवस्था में। लेकिन जैसे ही कंपैरिजन है, क्योंकि ये फॉर्मेटरी ऑपरेटर बहुत तेजी से काम करता है, मैकेनिकल हिस्सा है ये, वो इंटेलेक्चुअल इमोशनल हिस्सा नहीं है, मैकेनिकल हिस्सा है, तो बहुत तीव्रता से कार्य करता है। तो तर्क और तुलना बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है, लेकिन इसके गलत कार्य भी हैं। सही कार्य हैं, तर्क के गलत कार्य हैं, तुलना के गलत कार्य हैं, और इसके डिवाइन कार्य भी हैं। माना तर्क के सामान्य कार्य हैं, लेकिन सवेरे शाम तक बहानेबाजी, अपने पक्ष में फैसला देने के लिए वो सवेरे से शाम तक कुतर्क को प्रयोग करता रहता है, प्रत्येक व्यक्ति नहीं करता था, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कितनी तरह की वकील बनकर, बाबा कहते जज बनो और हम वकील बन जाते, विश्लेषण करते, व्याख्या करते उस बात की, हजार तरह से उस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए हम लॉजिक का प्रयोग करते हैं। लॉजिक अपने आप में सही है, लेकिन कानून अपने आप में सही है, लेकिन उस कानून को वकील अपने फेवर में मोल्ड करके गलत ढंग से प्रयोग कर रहा होता है। हमारे जीवन में हम इस लॉजिक को, तर्क को गलत ढंग से प्रयोग कर, डिवाइन लॉजिक क्या है, डिवाइन लॉजिक है जैसे फॉर एग्जांपल कि यदि आप, तर्क ये कहता है कि आपके पास 100 रुपया है और यदि आप किसी को उसमें से 70 रुपया दे देते हैं तो आपके पास कम हो जाएगा, 30 रुपया ही बचेगा, ये सामान्य लॉजिक है। डिवाइन लॉजिक है जो चीज आप दूसरों को देते हैं वह अनंत गुना बढ़ के आपके जीवन में वापस लौट आती है। तो आपको लगता है कि अभी आपने जरूरतमंद व्यक्ति है उसको चाहिए 70 रुपया दे दिया है, लेकिन आपको लगता है कम हो गया, लेकिन वो कम नहीं हुआ है, वो किसी परिस्थितियों में बढ़ी हुई मात्रा में आपको फिर से मिलेगा। तो इसके लॉजिक के बहुत फायदे हैं और बहुत तुलना हम करते रहते, गलत तुलना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना, जबकि दोनों ही व्यक्ति अतुलनीय है इस सृष्टि में, इस सृष्टि में एक न मिले दूसरे से, तुलना है, लेकिन सवेरे से शाम तक हम एक दूसरे से तुलना ही तुलना, अनंत, ये कैसे चल रहा है, अरे दो आदमी बैठा है, तीसरा आदमी जा देखो कैसे चल रहा है, तरह तरह के अपने क्या समझता है पता नहीं कैसे चल रहा है, अब कोई कोई लेना देना नहीं है इन बातों से। मैं जब शांतिवन, मेरे में एक समझो जो भी संस्कार है, एक संस्कार है कि मैं नक्की घूम के आऊँगा, सुशील भाई हमें मिलता है, एक तो मैं अकेले होता हूँ नॉर्मली, मैं किसी के साथ नहीं होता हूँ, 99% में मौका होता है मैं किसी के साथ नहीं होता हूँ, मैं के साथ तो होता ही हूँ, चूँकि मैं के साथ तो होता ही हूँ, राइट बात है, चूँकि चूँकि मैं तो है ही ना, हरदम है ना, अपने झूठे स्वरूप में है और अपने सच्चे स्वरूप में हरदम वो विद्यमान, उसकी अहम की जो स्थिति है वो सतत बनी रहती, नहीं तो चलेगा कौन, यदि वहाँ मैं है नहीं तो चलेगा कौन, चलने के लिए मैं का होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या कह रहे, हम ये कह रहे थे कि रास्ते चलते चलते ना बहुत बार जैसे हम अभ्यास भी करते, वैसे चाहे हम शांतिवन जा रहे होते गाड़ी से और यहाँ पर आकर के लोग कहते हैं आप गए थे, मैंने कहा कि हाँ मैं गया था, कहा मैंने आपको देखा, मैंने कहा मैंने आपको नहीं देखा, कम से कम 25 लोग हमें बताएंगे गाड़ी से आने वाले कि आप शांतिवन जा रहे थे, लेकिन मैं किसी को भी नहीं देखता हूँ, मतलब शुरू से अपनी एक आदत सी बन गई कि दूसरे के बारे में कुछ सोचना नहीं, विचार नहीं करना, तो देखना क्यों है उसको, ये समझ में नहीं आता मुझे। आज से 40-35 साल पहले मुझे इस बात का अनुभव हो गया था कि परचिंतन पतन की जड़ है, जो वाली बात है ना, वो मुझे 35 वर्ष पहले समझ में कि लोग दूसरे के बारे में सोचते क्यों हैं, वाई, ये हमारी समझ के परे हो गया था 35 वर्ष पहले। तो आज भी ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से, परचिंतन नहीं करता हूँ ये बातें नहीं कह रहा हूँ, ये कोई महिमा की बात नहीं, लेकिन मेरे अंदर स्वाभाविक हो गया कि लोग दूसरे के बारे में क्यों सोचते, उसके बदले किताब के बारे में क्यों नहीं सोचते, उसके बदले मैं कुछ ग्राफिक्स बनाऊँ, कुछ पढ़ूँ, कुछ लिखूँ, कुछ करूँ। तो अकेले होकर के यदि हम एकाग्र होकर के शांति से बिना किसी, तो देखना नहीं है किसी को किसी भी चीज़ के लिए। तो मैं बौद्धिक सत्ता के फॉर्मेटरी अपरेटस की बात कर रहा था, तर्क और तुलना की बात कर रहा था। यदि तर्क और तुलना को अभी हम देखें तो गलत तुलना क्या है, दो मनुष्यों के बीच तुलना, दो बच्चों के बीच तुलना, आज से कल की तुलना, सवेरे से शाम तक हम लोग आज से कल की तुलना करते थे, कल ऐसा हो गया, कल ऐसा होना चाहिए, आज ठीक नहीं चल रहा है, आज से कल की तुलना सवेरे से शाम तक हम लोग करते रहते हैं, यह तुलना का गलत कार्य है, तुलना का सही कार्य नहीं है, लेकिन बुद्धि का जो ये जो फॉर्मेटरी डिपार्टमेंट है ये इतनी तीव्रता से काम करता है, इतनी तीव्रता से काम करता है कि सेकंड के हजार में हिस्से में फटाफट फटाफट इधर से उधर तर्क और तुलना सोचने लगता है। पद, प्रतिष्ठा, धन, फिटनेस, सुंदरता, ये एक एक चीज, पद, प्रतिष्ठा, फिटनेस, अभी मैं एक हंसी की बात सुनाऊं, सुंदरता, हंसी की बात है। तो एक भाई एकदम प्रैक्टिकल कहता कि ये गुजराती माता है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये इसके कितने कितने बड़े बाल हैं, देख रहे हो, काले से, इतनी उम्र, इतने बड़े बाल है, काले, प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल, तो नकली है, असली नहीं है। मैंने कहा लेकिन मेरे को क्या लेना देना है, तो कहा आपको पता नहीं है। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, प्रैक्टिकल में पता नहीं है, आपको पता है कि नहीं पता है। मैंने कहा मेरे को बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन यार मैं बाल क्यों देखूंगा किसी का कि उसका काला है कि लंबा है कि क्या, मतलब मेरे समझ से बाहर है। कहा नहीं, पता होना चाहिए ना, ऐसे तर्क 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 पता होना चाहिए ना, सब बातों का पता होना चाहिए ना प्रत्येक मनुष्य को, तब तो आप सावधान रहेंगे। अरे सब बातों का पता होना चाहिए, इसका क्यों पता होना चाहिए, इसका पता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन तर्क और लॉजिक सवेरे शाम तक इतना एक्टिवेट है हमारे अंदर। मैंने कहा कि अरे, मैंने कहा तुमको कैसे पता चला, तो कहा हमारी मम्मी आई हुई है ना, तो हमारी मम्मी कमरे में गई तो स्नान करी, तो मम्मी बोली अरे इसने तो सारे वो टोपा निकाल दिए, टोपा जैसा ही था, बिग जैसा निकाल दिए, और इसके तो छोटे छोटे भूरे भूरे छोटे छोटे से बाल है। तो मेरे तो मम्मी ने बताया कि अरे ये तो क्या है, ये तो इतना बड़ा बड़ा बाल, इतना छोटा छोटा। मैंने कहा कि सवेरे से शाम तक लोगों का विषय क्या है, क्या है विषय, आपने तो सारे खत्म, आपको तो फिर भी है, हमारे तो काउंटिंग में कम है। तो ये बोला है बंजर भूमि हो गई है, लेकिन आजकल तो व्यवस्था है, साधन है बंजर भूमि को फर्टाइल करने का, आजकल तो ग्राफ्टिंग हो जाती है बंजर भूमि में। इससे खर्चा भी बच जाता है, और आपको तो आपका हाथ तो सवेर मुंह धुलाई करते समय यहाँ तक रुक जाता है, इसकी तो बाउंड्री का पता नहीं चलता कहाँ तक जाना है। हाँ आपकी तो बाउंड्री लगी हुई है, यहाँ तक धुलाई करते हुए यहाँ हाथ रुक जाता पता चलता है, लेकिन इनका पता नहीं चलता, बाउंड्री लेस सही स्थिति। तो अभाव सवेरे से शाम तक तुलना में ना सबसे बड़ी समस्या अभाव की, अभाव सवेरे से शाम तक हमारे चारों तरफ दिखाई देता रहता है, ये मेरे पास है और उसके पास नहीं है, ये मेरे अंदर है और ये अभाव हमारे अंदर सवेरे शाम तक हीनता का भाव पैदा करता रहता है, अभाव हमेशा हीनता का भाव पैदा करता है। जबकि बौद्धिक सत्ता का ये डिपार्टमेंट जो था तुलना करने पर, अभाव एक समझ की बात है कि ये चीज कम है, जैसे जैसे मान लो कि मधुबन में हर एक सीजन शुरू होने से पहले दादी मधुबन वालों के साथ बैठती थी, मधुबन वालों के साथ, किचन वालों के साथ विशेष बैठती थी, और फिर दादी कहती थी कि सब डिपार्टमेंट वाले चेक करो क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ कम है। उस टाइम आकर के दादी को कोई ये नहीं बोले कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ये काम नहीं होगा, अभी ही सब बताओ क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ है, तो उसकी पूर्ति। तो यह इस विभाग का काम है, अभाव को महसूस करना और उसे पूरा करना, लेकिन इसका उल्टा काम है सवेरे से शाम तक अभाव ग्रस्त स्थिति में रहना और उस अभाव को पूरा करने के लिए इस संसार में चिपकते रहना। अकेलापन सबसे बड़ा अभाव है हमारे जीवन में, नक्की पर तो ढूंढे ही मुश्किल से मिलता है कि दो आदमी नहीं जा रहा हो घूमने, इतना अकेलापन भी क्या है कि हम अकेले नहीं जा सकते घूमने, सुशील भाई तो अकेले घूमने जाए, तो अकेलापन ऐसा क्या है। अभाव है सवेरे से शाम तक, हमें लगता है कि इसके बिना हमारा पूरा नहीं हो सकता, हमारे अंदर कमी है। तो चाहे वो अभाव धन का है, लेकिन डिवाइन लॉजिक क्या है अभाव के बारे में, डिवाइन लॉजिक है कि हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, हमारे पास सब कुछ है, अहो भाव, धन्यवाद के भाव, आनंद के भाव, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो बाबा ने कहा आपने आपको हमने दिया है कि भगवान ही मिल गया तो बाकी और कौन सा अभाव है आपके लाइफ में। जब इस सृष्टि का बीज मिल गया तो और किस चीज़ की जरूरत है। यह है डिवाइन लॉजिक। लेकिन हमारी बुद्धि तर्क और तुलना के संबंध में इस डिपार्टमेंट को बहुत ही कम प्रयोग करती है और पहले वाले स्वाभाविक डिपार्टमेंट को भी बहुत कम प्रयोग करती है क्योंकि उसकी जरूरत बहुत कम होती है। लेकिन सवेरे से शाम तक इस डिपार्टमेंट को, अभाव के इस विभाग को, जो इसका नकारात्मक हिस्सा है, उसको सवेरे से शाम तक प्रयोग करती रहती है। एक दूसरे से हरदम ही तुलना करती रहती है, अभाव के बारे होता रहता है सवेरे शाम तक। तो ये तुलना बहुत गलत ढंग के कार्य हैं। इसलिए इसके परिणाम क्या निकलते हैं, दुख, अशांति, उलझन, भय, अनिर्णय, सूनापन, अकेलापन, खालीपन, हीनता, अपराध बोध, अहंकार। ये सब एक लंबी लिस्ट, मात्र इस तुलनात्मक डिपार्टमेंट को हम सही ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं तो इतने दुख का आयोजन हमारे जीवन में हो जाता है। अकेलापन आने लगता है, हम भयभीत होने लगते हैं, अनिर्णय की स्थिति हमेशा बनी रहती है, जजमेंटल स्थिति हमारी रहती है कई बार, और कई बार अनिर्णय की स्थिति यानी उलझन की स्थिति बनी रहती है, दुख अशांति बना रहता है। जबकि सही तुलना इसका क्या है कि प्रत्येक मनुष्य अद्भुत है, अतुलनीय है। एक तरफ हम किसी में कमी निकालते हैं, दूसरी तरफ हम ये नहीं देखते कि वह भी ईश्वर की संतान है, उसको भी भगवान मिला है, उसमें भी कोई विशेषता होगी। बाबा ने कहा भगवान मिला है तो उसकी कोई विशेषता होगी। और विशेषता की बात तो छोड़ दो, पार्ट ही अलग है ना, एक का पार्ट न मिले दूसरे से, ये तो असंभव है। जिसकी हम कल्पना करते हैं ना कि ये मेरे जैसा हो, कम से कम मेरे तुल्य हो, या इसके जैसा तो कम से कम ये हो, अरे ये अपने डिपार्टमेंट के कितने अच्छा ये आदमी है, अरे कम से कम अपने डिपार्टमेंट हेड को ही फॉलो नहीं कर रहा है, उसको ही फॉलो कर दो। तुलना 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 सवेरे शाम तक तुलना बुद्धि, कदम कदम पर निगेटिव नकारात्मक तुलना चलती रहती। यदि आप देखना ही बंद कर देना इस तरह से, जिसको हम सही ढंग से हम कहते हैं, तो हम दूसरों को देखते क्यों हैं? इतना तक कि हमको तो कई बार ही होता था कि मैं नीचे किचन से ना ऊपर के किचन में आ रहा होता हूँ, तभी भी मेरा जैसे आदत हो गई है, जब कोई बगल से जा रहा तो जा रहा होगा, हमको कोई लेना देना ही नहीं, जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं। लेना देना मतलब जरूरी काम हो, सामने से बुलाएगा चाहे बोलेगा कि भाई कॉफी चाहिए तो मैं जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा ना, ऐसा तो नहीं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, लेकिन उस बात से कोई लेना देना। तो हम सभी को इस बात को पक्का करना चाहिए कि हमारे पास इतना कम समय है अभी, इतने कम समय में हम टाइम पास कर रहे हैं क्या? इतने कम समय में हम दूसरों को सवेरे शाम तक क्यों देख रहे हैं? हम रास्ते पर चल रहे हैं, बोर्ड पढ़ते हुए चल रहे हैं, लोगों को देखते हुए चल रहे हैं, जैसे किसी ने हमको पैसा दिया है क्या कि सब ये सब बिना फालतू के काम सब करते हुए चलो, साइट सीन देखते हुए चल रहे हैं। आंगन से गुजर रहे हैं तो भीड़ इतनी आई है, 50 लोग हैं, एक आदमी 50 लोग क्यों देख रहा है भाई, समझ के बाहर है। सबसे बड़ी बात है कि वेस्ट ऑफ टाइम होता है ना हमारी, क्योंकि किसी चीज को आप देखते हैं खाली थोड़े, देखने के साथ यदि वो कुछ विशेष है तो उसका प्रिंट भी अंदर बनता है ना। और ऐसे तो स्मृति में इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन प्रिंटेड स्मृतियों का तो बहुत नुकसान होता है। अब जब शांति से हाँ एनर्जी तो बहुत जाती ही है, एनर्जी तो तब जाती है, लेने में नहीं जाती है इतनी, तब जाती है जब उसको भगाना होता है, डिलीट करना होता है, तब जाती है बहुत सारी। इसमें जब योग में बैठे हैं तब पता चलता है, छक्के छूटने लगते हैं कि जब वो स्मृतियां आए, जाती नहीं है, घूम घूम के आती, तो उस समय बहुत मुश्किल लगता है, उस समय उस शक्ति नष्ट होती है हमारी। तो तुलनात्मक कार्य को यदि, चूंकि ये फॉर्मेटरी ऑपरेटस है, तर्क और तुलना सवेरे शाम तक बहुत फास्ट गति से करता है, ये कार्यकारी शक्ति है वास्तव में हमारी। इसके बिना एक एक कदम पर धोखा हो सकता है हमको, एक एक कदम पर तर्क के बिना धोखा हो सकता है, लेकिन गलत तर्क के एक एक कदम पर धोखा ही हो रहा है। धोखा क्या हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, समय वेस्ट हो रही है, शक्ति वेस्ट हो रही है। तुलना में एक एक कदम पर जरूरत है, नहीं तो संभलेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और एक एक कदम पर हम तुलना कर रहे हैं और वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। और एक एक कदम पर जो हमारी कमाई हो सकती थी डिवाइन तुलना से, वो हमारी खत्म हो रही है। तो ये है फॉर्मेटरी एपरेटस इसका। तो संक्षेप में, ये बौद्धिक सत्ता का तीसरा डिपार्टमेंट है। इसका चौथा डिपार्टमेंट है अनैच्छिक, अनैच्छिक सत्ता, इनवॉलेंट्री। अनैच्छिक सत्ता बहुत महत्वपूर्ण सत्ता है। यह बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है यह सत्ता, क्योंकि इस शरीर में भी जो हमारी अनैच्छिक सत्ता है वो सबसे तेज गति से कार्य करता है ना, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीटिंग, ये सब बहुत तेज गति से कार्य करता है। तो बुद्धि का जो अनैच्छिक डिपार्टमेंट है वो बहुत फास्ट है, बहुत तीव्र गति से कार्य करता है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसका सही ढंग से हम प्रयोग करें और उसको सही ढंग से हम जानें, तो हमारे जीवन में बहुत सारी सफलताएं मिल सकती है। यह डिपार्टमेंट है स्मृति का डिपार्टमेंट। बुद्धि का यह विभाग स्मृति डेटाबेस जो है ना, स्टोर हाउस है। आपकी सारी पहचान इसी डिपार्टमेंट से है, इसी स्मृति से। बचपन से हमने जो कुछ भी इंद्रियों के माध्यम से देखा, जाना और अनुभव किया, वह सारा ज्ञान यहां संग्रहित है। यहां सब तरह के सुख दुख, सब तरह की संवेदनाएं, सब तरह की, यदि हथौड़े, आपकी पहचान क्या है? अब तो बाबा ने हमें आत्मा की पहचान दिया, लेकिन हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान हमारी स्मृतियां हैं, सिर्फ और सिर्फ स्मृतियां। यदि एक हथौड़ा मार दे और स्मृति सब यहां से गुल हो जाए, आदमी वहीं का वहीं खड़ा है जहां 6 महीना पहले पैदा हुआ था, कुछ नहीं है। यानी मैं स्मृति हूं, मेरी पहचान स्मृति से है और ये कलेक्टिंग स्मृतियां हैं हमारी सवेरे से शाम तक, और ये बहुत तीव्र गति से काम करता है। यदि सुशील भाई मेरे सामने आ गया और मैं बोलूं कि स्मृति ये बताओ कि यह कौन व्यक्ति है, तब तक तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सुशील भाई कुछ कह नहीं आए था, कुछ बात नहीं, सुशील भाई सामने आए, स्मृति के सेकंड के 1000वें हिस्से में वो चीजें बम्प होती है और तुरंत हमें पता चलता है कि सुशील भाई, ऑटो सुपर फास्ट स्पीड से कार्य कर रही है स्मृतियां। तो स्मृति बहुत वंडरफुल ढंग से कार्य करती है। तो ये चारों डिपार्टमेंट्स और भी है, इसका सारा बहुत डिटेल्स है। स्मृति कैसे विचार में बदलती है, स्मृति कैसे अहम में बदलती है, स्मृति को बौद्धिक डिपार्टमेंट जब कोई कार्य कर रहा है, इंटेलेक्चुअल सेंटर्स, तब उसको स्मृति डिपार्टमेंट्स को मदद करनी चाहिए, नहीं कि टांग अड़ानी चाहिए जा करके, और वो टांग अड़ाता है जा करके वहाँ पर उस काम के लिए। तो ये सारा डिटेल है, तो कल देखते हैं इसके दूसरे विभाग के बारे में। थोड़ा सा हम इसकी बुक्स की भी मदद लेंगे, थोड़ा सा विस्तार से थोड़ी हम चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर ऊपर ही हमारी थोड़ी चर्चा रहती है। क्या आपको लगा कि यह जानना जरूरी है? क्योंकि जिसके साथ हम रह रहे हैं उसके साथ, उसके साथ ही नहीं है और सबके साथ है, जिसके साथ होना चाहिए उसके साथ नहीं है, सबको साथ रख रहे हैं। मैं करोड़ प्रति सेकंड विचार बदल रहे हैं ना, 56,000 तो आपके एक दिन में चलते हैं विचार। मैं के 1000 रूप मैंने लिखा, मैं के रूप 1000, 1000 माना हजारों। ओम शांति।